वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिशे गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तदभक्ताय यं प्रप्रजन्तमनुपेतम पायनं विरह पातर्याजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमान् तवैवास्मि न जीवामि तया विना इति विज्ञाय राधे तं नयमाम चरणन्तिके। सर्वप्रथम मैं अपने परमाराध्यतम श्रील गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद स्वतः श्रीमद भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि बार दंडवत प्रणति पुष्पांजलि अर्पित करता हूँ। तत्पश्चात उपस्थित त्रिदंडी वैष्णवगण ब्रह्मचारीगण वैष्णव एंड वैष्णवगण माताएं बहने पिछले साल भी हम लोग आए थे और इस साल भी प्रोग्राम हम लोगों का नियमित रूप से और ठीक रूप से चल रहा है। मैं तो चाहता था जो अधिक से अधिक लोग इन प्रचार इन विषयों का लाभ उठाएं और अपने जीवन में ग्रहण कर सुखी हों। परीक्षित महाराज जी को श्री सुखदेव गोस्वामी ने बतलाया कर्मणि आरोहमानानां दुःखतै सुखाय च पश्येत् पाप विमोचनम् मिथुनी चारिणाम। इस जगत में लोग सुख की लालसा से और दुखों को दूर करने की लालसा से कर्म करते हैं। कोई भी प्राणी हो परस्पर मिलजुल करके या अकेले या समस्त जगत मिल करके चेष्टा करते हैं कि हमें सुख हो और वह सुख भी हमें हो कैसा निरवच्छन्न, उसमें दुख की छाया न रहे। किंतु होता है उल्टा, कोई मरना नहीं चाहता मरना पड़ता है, बुढ़ापा नहीं चाहता बुढ़ापा भी आती है। कितने तरह के जन्म के सृष्टि के प्रारंभ से ही प्लान बने सुखी रहने के लिए। आज भी साइंस इतना उन्नत हुआ है, होम साइंस से आरंभ करके सब मेडिकल साइंस इत्यादि रसोई का घर से लेकर सभी कुछ उन्नत हुआ। किंतु हुआ क्या, कोई सुखी हुआ? इसके लिए हम लोग युद्ध लड़ते हैं, परस्पर विवाद करते हैं, किंतु कोई भी सुखी नहीं हो पाता। सुखी वही रहेगा जो भगवान का भजन करे, और कोई उपाय नहीं है। नित्यार्थ देन वित्तेन दुर्भेन आत्ममृत्युना पशुभी। हम अर्थ के लिए चेष्टा करते हैं जो अर्थ से हम सुखी रहेंगे, किंतु दुर्लभेन आत्ममृत्युना भगवान ने जीवात्माओं को ये मनुष्य दिया जन्म दुर्लभ, किंतु ये धन नहीं रहने पर भी दुखी हो जाने पर भी कहां रखे कैसे रहे, डकैतों को मालूम हो गया तो बस परिवार के साथ में कट हुआ है? और रहा भी उसे भी दुख, न रहे तभी दुख। इसलिए उस अर्थ के लिए हम लोग चेष्टा करते हैं जैसे सुख होगा, और उससे जब अर्थ की यही दशा है तो फिर अर्थ से कमाया जाने वाला बाग बगीचा, पशु, कुत्ते, आजकल कुत्ते का बहुत शौक रहा है, किसी को बिल्ली को, किसी को खरगोश को, किसी को कुछ, ये सब हो रहे हैं, तो इससे क्या सुखी हो जाएंगे? उसी अर्थ से विवाह होता है, शादी होती है, भाई इसे कोई सुखी नहीं रहेगा, सुखी रहेगा केवल मात्र भगवत भक्ति से। भगवत भक्ति को भी समझना होगा, भगवत भक्ति है क्या? आखिर शंकर मंदिर में गए, चौकटे पर ऐसा दबाने लगे, ठाकुर जी हमारी लड़की ठीक हो जाए, उसकी शादी हो जाएगी तो 125 रुपए का बताशा चढ़ाऊंगा, ये भक्ति नहीं है। इसलिए भक्ति को समझना चाहिए। मैं प्रतिवर्ष बतलाता हूं, फिर याद करने के लिए फिर से बतलाता हूं। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माध्यनावृतम अनुकूलन कृष्ण अनुशीलनम भक्ति उत्तम। जब तन से, मन से, वचन से, इसके अतिरिक्त भावनाओं से कृष्ण को सुख लगने के लिए, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए ही कृष्ण की सेवा हो, इन सारी चीजों से, और भी हरि गुरु वैष्णव के आनुगत्य में हो, तब ये भक्ति हो। वो भी निरंतर, आज किया कल नहीं किया, ये घंटा किया नहीं किया, ऐसा नहीं, निरंतर बहने वाली, प्रवाहित होने वाली, और जिसमें कोई सांसारिक पारलौक भी कामना न रहे, कोई भी सांसारिक कामना न रहे, न स्वर्ग की, न मोक्ष की, न धर्म की, न अर्थ की, कोई भी कामना, और ज्ञान कर्म योग तपस्या इत्यादि से ढकी हुई न हो। कर्म करना पड़ेगा किंतु भक्ति के अनुकूल कर्म करो, ज्ञान की भी जरूरत है, इसलिए कृष्ण तत्व, जीव तत्व, माया तत्व को समझो, किंतु ऐसा मत सोचो जो ज्ञान नहीं होने से भक्ति नहीं होगी, कर्म नहीं रहने से भक्ति नहीं होगी, ऐसा मत समझो, नहीं तो भक्ति नष्ट हो जाएगी। इसलिए तन से, मन से, वचन से, कामना से, भावना से, सब प्रकार से जो चेष्टा की जाती है निरंतर कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए ही, केवल और कोई दूसरी कामना वासना न हो, तो उन चेष्टाओं को भक्ति कहते हैं। इसके लिए देखना होगा कि ध्रुव जी की जो भक्ति थी वो राज्य पाने के लिए थी, पीछे भगवान का दर्शन होने पर वो इच्छा उनकी दूर हो गई, किंतु उनकी जो भक्ति थी जो 6 महीने में केवल भगवान को पाया, वो इतना कठोर तपस्या किया किस लिए? राज्य पाने के लिए, इसलिए ये भक्ति नहीं हुई। भक्ति हुई तो कर्म मिश्रा भक्ति अथवा सकाम भक्ति हुई, शुद्ध भक्ति नहीं हुई, इसको शुद्ध भक्ति नहीं कहते। शुद्ध भक्ति अभी जो बतलाया तब तो वो शुद्ध भक्ति होगी, इसलिए ध्रुव महाराज की भक्ति भी शुद्ध नहीं है। इसको अच्छी तरह से समझने के लिए एक उदाहरण बतलाता हूं, खूब ध्यान से श्रवण करेंगे। श्री रामचंद्र जी अपने भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता को लेकर वनवास में गए, वनवासी जैसा वेश बनाया, वन में गए, भरत जी शत्रुघ्न के साथ अपने ननिहाल में थे, मामा के यहां। इधर में महाराज दशरथ ने देखा जी अब मैं वृद्ध हो गया हूं और हमारा बेटा बड़ा बेटा योग्य हो गया है, सभी बेटे योग्य हैं, इसलिए मुझे अब तपस्या करने के लिए भगवान की आराधना करने के लिए अब जाना चाहिए। इसलिए महाराज वशिष्ठ जी से और बड़े बड़े ऋषि महर्षियों से परामर्श करके उन्होंने कहा अब मैं राज्यपाल अपने बड़े बेटे युवराज रामचंद्र जी को देकर के मैं अब आप भगवान की आराधना करने के लिए जाना चाहिए। सब ने उनको सराहा जी ठीक ऐसा ही होने चाहिए, तो आप लोग कोई मुहूर्त देखिए, मुहूर्त देखा जी कल ही की मुहूर्त है, बड़ी सुंदर बसंत ऋतु चैत का महीना नौमी तिथि, बड़ी सुंदर सुंगदन हवा बह रही है, सोचा जैसे अब इसी समय हो जाए। रात में ही पूरी तैयारी की गई, वशिष्ठ जी ने आदेश दिया हो गया, किंतु महारानी महामानी कैकई जी ने अड़ंगा डाला और वह राजभर्त को दिलवा दिया और राम के लिए 14 वर्ष वनवास के लिए आदेश हो न चाहते वे भी मर्यादा की डोरी से बंधे हुए महाराज दशरथ को हां नहीं कुछ भी नहीं कहा। रामचंद्र जी आए सवेरे दूसरे दिन और कैकई से पूछ करके चल दिए बन को, पिताजी को प्रणाम किया और पिताजी हाय हाय करते हुए हाराम हाराम कहते हुए प्राण प्रत्याग कर जब बन को चले गए चित्रकूट में पहुंचे। इधर भरत को संदेश दिया गुरुजी ने जल्दी आओ कोई विशेष कार्य है, किंतु कार्य क्या है नहीं बदलाया। अपशगुन होने लगे, बाईयाणक आंख फड़कने लगी और बिना बादल के रक्त में रक्त जैसा पानी गिरने लगा वर्षा से और बड़े बड़े अपशगुन हुए। किसी प्रकार से वहां से मामा का आदेश लेकर के आए, उनको अभिनंदन करने के लिए स्वागत करने के लिए कोई भी नहीं आया, कोई भी नहीं आया। ये क्या बात है, जब और आगे गए तो उनको देख करके जितने गांव वाले थे अयोध्यापुरवासी सब मुख फेर दिए, ऐसा तो कभी नहीं होता था। रस से उतरे देखा जी कोई नहीं आया, देखा जी केवल उनकी मां मंथरा के साथ में उनका अभिवादन कर रही है, मैया पिताजी कहां हैं? तो पहले तो बोली नहीं, ओ तुम्हारा बेश कैसे, तुम्हारा सिंदूर कहां गया, तुम्हारे रंगीन वस्त्र कहां गए, रानी का जो वेश था पहले का वो कहां गया। बेटा तुम्हारे पिताजी परलोक सिधारे, तो राम कहां है, तो राम तो वन में गए। वन में गए किस लिए? बेटा सब कुछ तुम्हारे लिए मैंने किया, मैंने पर में राजा से 2 बार मांगने को कहा था, उन्होंने प्रतिज्ञा की थी और यही मैंने मांगा, भरत का राजगद्दी हो और राम को 14 वर्ष के लिए बनवास। राजा तू हमारी मां नहीं मेरी शत्रु हो, मुझे धिक्कार है जो तुम्हारी गोख से मैंने जन्म लिया, आज से तुम्हारे और हमारे बीच में माता पुत्र का कोई संबंध नहीं रहा, मैं सब खत्म किया। और फिर कौशल्या जी के यहां करके रोने लगे और उन्होंने घोषणा की कि मैं अभी सब जो हमारे राज्याभिषेक के लिए ये सब चीजें प्रस्तुत है आराम के लिए पहले थी और मेरे लिए हो रहा, सबको साथ लिया वशिष्ठ इत्यादि सब ऋषि महर्षि और प्रजाओं को साथ लेकर के चतरंगनी सेना को लेकर के राम को मनाने के लिए चले। चित्रकूट में पहुंचे, राम से मिलन हुआ, महाराज दशरथ तो चले गए थे, इधर रामचंद्र जी को उनके लिए जल अर्पण इत्यादि करना था संस्कार, उस दिन तो कुछ नहीं हुआ। दूसरे दिन रात में भरत जी गए कौशल्या मैया के यहां, माता जी मैं राम को मनाने के लिए आया हूं, आप उनकी मैया हैं, आप जो कुछ कह देंगे जरूर मानेंगे, इसलिए आप कहिए जी भरत की भरत जैसा प्रार्थना कर रहा है उस संसार में राज्य पर आपका अभिषेक हो और आप लौट चलिए भरत मार अयोध्या। बार बार कहने पर वो रोने लगी और बोली बेटा मैं कैसे कहूं, वो अपने पिता के आदेश से आया है, मैया के आदेश से आया है, मैं उसे धर्म को छोड़कर के अधर्म करने के लिए कैसे कहूं, तो क्या मैं अधर्म के पथ पर हूं? नहीं बेटा, तुम भी धर्म के पथ पर है, धर्म के पथ पर है, तो फिर मेरी बात क्यों नहीं मानती है तुम? मैं वैसा नहीं कर सकती, माता पिता के आदेश को झूठे करके लौट चलो, बेटा ये कैसे कहूं, तो मैं क्या झूठ बोल रहा हूं? नहीं तुम ठीक हो, किंतु मैं ऐसा नहीं, तुम दोनों हमारे बराबर के पुत्र हो, बल्कि मैं तुम्हें अधिक स्नेह करता हूं, तो क्या आप नहीं चाहती हैं कि राम लौट चले? मैं चाहती थी हूं खूब कि मैं बंधन में हूं। जब उन्होंने नहीं कहा तब गुरु वशिष्ठ के पास में गए, गुरु जी मैं जिस कामना के लिए आए हैं आप आशीर्वाद कीजिए जो मैं मेरी कामना पूर्ण हो, राम लौट जाए। आप रामचंद्र हमारे सभी के गुरु हैं, कुल गुरु हैं बहुत पहले से, आप आदेश देंगे वो जरूर मान जाएंगे। मैंने कहा जी मैं कैसे कहूं, अधर्म पथ पर तो है नहीं, ये राम धर्म की धुरी है और तुम प्रेम के अथा समुद्र हो, हिमालय डूब जाएगा किंतु अटस्य मत्स्य इधर उधर नहीं होगा, तो तुम्हारा प्रेम जो है प्रबल है समुद्र की भांति अथा, उसमें राम की मर्यादा डूब तो जाएगी किंतु फिर भी वो टस्य मस नहीं होगा, इसलिए मैं कैसे कहूं अधर्म करने के लिए। बड़े निराश हो गए, सुनैना जी के पास में गए, सीता जी की मैया जनक जी की पत्नी, उनसे बहुत कहा, अच्छा मैं अपने पति से कहूंगी कल के लिए, क्या वो नहीं चाहते जी हमारी सीता राजधानी में आ जाए और बन 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 न भटके। उन्होंने कहा जे जो कुछ हमारे गुरु कहेंगे मैं वह कहूंगा जिससे सबका कल्याण। दूसरे दिन विराट सभा बैठी, ऋषि महर्षि लोग वहां पर सब एक तरफ में बैठे, सब ऋषि महर्षि लोग, दूसरी तरफ में माताएं बैठी और अयोध्या के सब विशेष विशेष नागरिक बैठे, और फिर एक तरफ भरत बैठे एक तरफ में राम बैठे। महाराज वो सीता जी के पति पिता जनक महाराज बैठे, वो सिद्ध ऋषि थे, अपूर्व ज्ञान के भंडार थे। राजा जनक उनको क्या कहते हैं, विदेह कहते हैं, शरीर रहते हुए भी शरीर नहीं है, कोई भी आसक्ति नहीं, अथाह ज्ञान है। वशिष्ठ जी ने कहा आज अयोध्या पुरियों का सौभाग्य है, यह परिवार आज अथाह शोक समुद्र में डूब रहा है, कोई पार कराने वाला नहीं है, किंतु आज भगवान की इच्छा से यहां महाराज जनक पधारे हैं, अथाह ज्ञान संपन्न, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि स्कूल का पार लगाएं, बेड़ा पार, दोनों को सांत्वना दें, और दोनों के लिए जो अच्छी है बात, जो मानने योग्य हो उसको ये बतलाएं, जयराम को क्या करना है, भरत को करना क्या है इस परिस्थिति में। वे समाधिस्थ हो गए और अपने गुरु शंकर जी का स्मरण किया। स्मरण करके बोले, देखो हमने अच्छी तरह से विचार किया है, बतलाओ मेरी बातें भरत तुम मान्य करेगा, मानेगा या नहीं, नहीं तो बेकार काम क्यों कहे। उन्होंने कहा सब तरह से मैं मानूंगा, जो कुछ आप कह देंगे मैं मान लूंगा। राम की तरफ में बेकार बोला कि तुम मेरे आदेश को पालन करेगा या नहीं, जरूर करें, आप जो कुछ कह देंगे अभी तुरंत एक सेकंड की देरी नहीं होगी मैं कर लूं। तो उन्होंने विचार करके कहा, देखो भरत की जीत हुई और राम की हार हुई, भरत की जीत, सब लोग बड़े प्रसन्न हो गए, भरत की जीत हुआ मैंने अयोध्या लौटना पड़ेगा, इसलिए बड़े प्रसन्न हुए। फिर बोले, देखो भरत का प्रेम अथाह समुद्र के समान है और राम की मर्यादा जो है या धर्म का पालन करना वो हिमालय जैसा बृहत है, किंतु भरत का जो प्रेम है ऐसा भ्रातृ प्रेम, उसमें ये राम की मर्यादा डूब गई, इसलिए भरत की जीत हो गई। बड़े प्रसन्न हुए सब लोग। अब सोचा राम का राज्य तिलक होगा, अयोध्या लौट जाएंगे। उन्होंने कहा जो देखो एक बात और विचार करो, प्रेम की भी एक मर्यादा होती है, प्रेम की मर्यादा होती है, क्या मर्यादा होती है कि प्रेमी को सब प्रकार से सुख देखना, सुखी देखना चाहता है, प्रेमी जिसको वो प्रेम करता है उसको सुख होना चाहिए, ऐसी ही क्रिया करता है। जो भक्ति का डिफिनेशन हमने जो बतलाया, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए ही कृष्ण की सेवा हो, उसे कोई कामना पूर्ण करने के लिए प्रार्थना, इसलिए देखो राम किस में प्रसन्न है ये देखो, तुम्हारा इष्ट देव तो राम है, हाँ पूछो उसे कैसे वो सुखी होगा, वो क्या चाहता है वो करो। अब तक तो तुम अपनी तरफ से सोच रहे थे, जब रामचंद्र लौट आने से मुझे बड़ी खुशी होगी, तुम्हारी खुशी होगी, रामचंद्र को खुश होगी कि नहीं खुशी होगी ये विचार करो, इस चीज को आप लोग भी समझें। मैं उनकी सेवा करके खुश होऊंगा, ये भक्ति का विचार नहीं। हमें कष्ट लाख हो किंतु हमारे प्रभु को सुख पहुंचना चाहिए, वो सुखी होनी चाहिए। जाओ राम के चरणों में बैठो और उनसे पूछो कैसे आप सुखी, क्या चाहते हैं। उन्होंने कहा, आपको कोटि कोटि बार दंडवत प्रणाम करता हूं, आप हमारे गुरु हैं, अब तक हमारे नेत्र बंद थे, आज हमारे आंखों को आपने गुरु की भांति खोल दिया, मैं अब तक केवल अपने सुख की बात कर रहा था, दूसरों के सुख की बात कर रहा था, किंतु राम का सुख तो हमने देखा नहीं। ले रामचंद्र जी के चरणों में बैठ करके बोले, प्रणाम करके, जे प्रभु ये मेरे गुरु जी ने आज हमारी आंखों को खोल दी, आप किस में खुशी हैं आप अब बतलाइए, मुझे क्या करना चाहिए, मेरे क्या करने से आप सुखी होंगे। राम बोले, जे तुम्हारी जीत हो गई है, मेरी हार हो गई है, इसलिए मैं अभी तुरंत अयोध्या का राज सिंहासन में ग्रहण करता हूं, मैं आज से अयोध्या का राजा बना, सब कुछ ठीक है, किंतु हमारे पिताजी का वचन भी झूठा ना हो, मैया का वचन भी झूठा ना हो, इसलिए मैं राजा होते हुए तुमको आदेश दे रहा हूं कि 14 वर्ष तक मेरे राज्य को संभालो, तुम्हारा राज्य नहीं मेरा राज्य, मेरा प्रतिनिधि बनो और प्रतिनिधि बन करके राज्य को संभालो। ना जी ठीक है, किंतु एक प्रतिज्ञा है, 14 वर्ष के बाद में 1 घंटे का 1 सेकंड का विलंब होगा तो यह शरीर नहीं रहेगा, नहीं नहीं रहेगा, मैं जरूर आम जाऊंगा पहले, तुम निश्चिंत रहो, यह मेरा राज्य है। ये देखो, इसको कहते हैं भक्ति, अपने लिए कुछ मत मांगो कृष्ण से, भक्त की तरह भक्तिमान बनो, अपने सुख के लिए गुरुजी को मत देखो, उनके सुख के लिए गुरुजी की सेवा करो, यहीं से आरंभ करो, चैरिटी बिगेंस फ्रॉम होम, यहीं से शुरू करो, कैसे गुरुजी को खुश कर सकते हैं। गुरुजी भी वैसे आदर्श कोटि के होने चाहिए, जैसे तैसे नहीं, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, कैसे खुश सुखी हो सकते हैं, क्या करने से, निकट रहने से सुखी होंगे, न कहीं अमेरिका भेज देंगे या नवदीप धाम में भेज देंगे, कहां भेजने से कैसे वो सुखी होंगे, इस पर तुम देखो विचार करो, नहीं तो भक्ति नहीं होगी। जसोदा मैया को ब्रजवासियों की भक्ति देखो, ठीक है ठहर जाओ, जसोदा मैया का देखो, ब्रजवासियों का देखो, हम लोग इस प्रसंग में वर्णन करेंगे उनका चरित्र भी, जो कैसे कृष्ण को अधिक से अधिक प्रसन्न किया जा सकता है, इसमें ब्रजवासियों का हम लेंगे, बैकुंठवासियों का भी विचार करेंगे, लौकिक जो श्लोक पे जो भक्त हुए हैं उनका विचार करेंगे, और उन सब में अधिक सबसे अधिक कृष्ण की सेवा करने वाली जो गोपियां हैं, और उनमें भी राधा जी जो कभी भी अपने मन में किसी प्रकार की कोई भी अपनी इच्छा नहीं रखने वाली हैं, उस राधिका के उच्चतम भावों को भी हम लोग इस भक्ति के अंदर लेंगे। इसलिए आप लोग इस चीज को ध्यान रखिए, कैसे हम भजन कर सके, राधा कृष्ण को कैसे हम सेवा कर सकते हैं, उनसे कुछ न मांग, बस मांगे यही आपके चरणों में भक्ति हमारी, बस ये कामना कामना नहीं है। इसके बाद में हम अभी और वक्ता लोग बोलेंगे, फिर अंत में मैं बोलूंगा। मम स्नेहमयी पुत्री राधिका, राधिका संस्कृत भाषायां यत्किंचिन पद इन संस्कृत, एक तो दो देखो, हमारे देश की हैं, हिंदी के बाद क्या संस्कृत भाषा में बोलेगी, थोड़ी सी जानती है संस्कृत पढ़ी, और वो भी लड़का है, हिंदी में और सब भाषाओं में बोलने वाला छोटा सा बच्चा, उससे भी छोटी उम्र की है। ओ यू शुड अंडरस्टैंड, गिव हिम माइक। ओ फ्रॉम रशिया, वैसा हिंदी की भी जननी है, संस्कृत की 2 बेटियां हैं, एक बड़ी छोटी बड़ी है, एक छोटी है, बड़ी बेटी हिंदी है, किंतु छोटी बेटी जो बंगला है वो और सुंदरी है और बड़ी गुणी और मधुर है। इसलिए बंगला भाषा में कृष्ण का चरित्र इतना मधुर रूप में वर्णन किया गया है, हिंदी वाले लोग उसको स्पर्श नहीं कर पाते। हिंदी के किसी भी कवि में ऐसा मैंने देखता पारकीय उन्नत उज्जवल रस का तनिक भी किसी ने छुआ हो। गोस्वामी दास जी हैं, तुलसीदास जी, हमारे सूरदास जी हैं, मीराबाई हैं, किंतु पारकीय रस को किसी ने स्पर्श नहीं किया, और बंगाल के कवि लोग और कितने मधुर रूप में चैतन्य चैतामृत इत्यादि में, गोविंद दास के कर्चे में और हमारे गोस्वामियों के पुस्तकों में इसका वर्णन किया है। ठीक, ओ श्रीनिवास यशोट कम। भक्ति के विषय में प्रहलाद जी के चरित्र से कुछ उपदेश जो उनके हैं वो संक्षेप में बोलो हिंदी में। हाँ यहीं पर इधर प्रहलाद महाराज जी के चरित्र को व्हाट ही गेट टीचिंग्स टू द बॉयज आर एनीथिंग यू नो।
ओम ज्ञान निरंतस्य ज्ञानंजन शलाक्य चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। पञ्चाकल्पतरुद्रश्य कृपासिन्धुरेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री गौरवृन्द हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
यह कैनेडिया कनाडा है, अमेरिका से और उत्तर वहां से आया है प्रचार से। ऐसे ऐसे छोटे छोटे सुंदर सुंदर मधुर भाषी ये सब बच्चे आ गए हैं, कहते हैं कि हम वहां के रहने वाले भजन करते हैं और ये हिंदुस्तान में रहने वाले जिनके पूर्वज भक्त थे हा है उनको धिक्कार है जो भजन नहीं करते। ठीक बोलो।
यद्यपि मैं मेरी बोलने को कोई योग्य नहीं, तभी गुरु जी दृष्टि में आपके समक्ष अटूट शब्द बोलने को प्रयास करता तो गुरु जी ने आदेश दिया कि प्रहलाद चरित्र के ऊपर कुछ बताना है, इससे पहले मैं कुछ और कहना चाहता हूँ। पहली बात ये है कि हम सभी लोग इस परमार्थिक सभा में क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं, हम कुछ महाराज जी से सुनने अथवा सीखने आए हैं, है ना। हम रोज अखबार में पढ़ लेते हैं कि कितने हजारों हजारों लोग बाढ़ भूकंप सुनामी इत्यादि से मर जाते हैं। हम हमारे सामने माता पिता भाई बंधु सब बूढ़े होके एक एक करके मर जा रहे हैं, हम भी बूढ़े हो रहे हैं, बाल सफेद हो जा रहा है, चश्मा पहनना पड़ रहा है, कान टूट रहा है, हम बीमारियों से पीड़ित और देश विदेश की आपस में कितनी लड़ाई हो रही है। यहाँ जम्मू में भी देखो पाकिस्तान भारत में कितनी लड़ाई हो रही है। तो ये सब दुख देखकर हमारी मन में कुछ इच्छा उत्पन्न होनी चाहिए कि हम इस संसार को पार करें, किंतु हम कुछ जानते ही हैं। यहाँ तक कि हमको ये नहीं पता कि वास्तविक रूप में हम कौन हैं, तो हमको कैसे पता चलेगा कि भगवान कौन है, माया क्या है और भगवान प्राप्त करने के लिए क्या उपाय है। इसलिए हमको एक सद्गुरु के चरणों में बैठकर हरिकथा सुनना है। हरिकथा कोई साधारण वस्तु नहीं है, ये बात ध्यान में रखना। हरिकथा एक निर्मल नदी जैसा गुरु के मुख से गया है, हमारे चित्त को साफ करेगी वो हरिता की नदी। शास्त्र में एक और अध्याय में दिया गया है, जनन मरण आदि संसार आनंद संतोष दुख शीलक जल रसिक एवं उपार पानी ब्रह्म निष्ठम गुरु अपश्रिष्य तब अनुसरते। कि जैसे जब किसी का बाल में आग लग जाते तो वो फटाफट पानी का खा जाता, उसी ठीक प्रकार से हमको जो इस संसार का दुख से जल जा रहे हैं, हमको क्या करना चाहिए? गुरु के पास फटाफट भागना चाहिए और शरणागत होना चाहिए। इसी संबंध में एक और प्रश्न होता है कि गुरु कौन है और हम किस से सुनना चाहिए? बहुत से गुरु हैं आजकल, तो हम सोच भी पड़ गए किस से सुनना चाहिए, हजारों हजारों गुरु हैं। ये बात शास्त्र में भी कहा गया है, गुरु बहव संति शिष्य मित बहार को दुर्लभ सदगुरु देवी शिष्य संत बहार को। कि इस जगत में बहुत से गुरु हैं जो शिष्यों से लाभ लुटाना चाहते हैं। हमारे श्री भक्ति सरंज सचिव राव पर एक कहानी सुनाते थे जिससे हम देख सकते हैं हमको किसी भी अनुसरण नहीं करना चाहिए, मतलब सदगुरु के अनुसरण करना चाहिए। तो वे सुनाते थे कि एक बार एक अंधा व्यक्ति अपने ससुराल जा रहा था और वो मतलब धीरे धीरे से जा रहा था और रास्ते में एक उनको एक ग्वाला मिला और पूछा, भैया आप मेरे को ससुराल ले जा सकते हैं? मैं तो अंधा व्यक्ति हूँ, कभी कभी रास्ता भूल जाता हूँ और धीरे धीरे से जा रहा। तो ग्वाला ने बोला, बाबा मैं तो गौ चराने नहीं लगा हूँ, अगर मैं जाते हैं यहाँ से तो सारी गाय भाग जाती है। हाँ, मेरे पास एक अच्छी सी गाय है वो ले जाए। तो ग्वाला गाय को ले आया और बड़ी खुशी से वो अंधा व्यक्ति गाय को खुश पकड़ा, क्योंकि वो अंधा व्यक्ति गाय के पीछे नहीं चल पा रहा था। तो पीछे से जोर जोर से तीन शाह था तो गाय डर गई और जंगल से होकर भागने लगी। रास्ते में छोटे खेर झाड़ी पत्थर उससे होकर आदमी को पीछे को ले जाता। अंधे व्यक्ति तब अपने सब फटके निकल के चौक लगी, किंतु किसी तरह से गाय ने आदमी को आधी रात को ससुराल पहुंचाया। ऐसी अवस्था में घर के लोग देखे कि बेचारी गाय कितनी डर गई, ये कौन है ये नंगा व्यक्ति जो जिसके शरीर में इतनी चोट लग, तो जोर जोर से कपड़े मारने लगे, सोचे कि ये कोई गाय चोर होगा। तो देखो किसी गाय का अनुसरण करने से इस आदमी को कितना कष्ट हुआ। इसलिए बंगाल में कहते हैं, गुरु का अनुसरण न करो गुरु का अनुसरण करो गोरु का नहीं, गोरु मतलब गाय। तो इस तरह से हम बड़ी भाग्यशाली हैं कि आज हमारे सामने गुरु जी बैठे हैं जो हमसे कुछ भी नहीं लेना चाहते, वे सिर्फ हमें कुछ देना चाहते। सदगुरु का लक्षण है, उस श्लोक में बताया गया है, दुर्लभ सदगुरु देवी शिष्य सतभारक। सदगुरु है वो है जो शिष्यों का प्रथा नष्ट करना चाहता है। हमारे प्रथा क्या है? पहले आधे फिर अधिभोक्ते, परंतु में आदमी अध्यात्मिक क्लेश क्या होता है? जैसे बाढ़ भूकंप सूखा सुनामी ये सब क्लेश जो देवताओं से प्राप्त होता है वो आदि दैविक क्लेश है, आदि भौतिक क्लेश है जो हमें दूसरों से जो क्लेश दूसरों से हमें प्राप्त होता है। जैसे इस दुनिया में लोग दूसरों को परेशान करते हैं, हत्या करते हैं इस तरह से, और बीमारियों में, ये सब आदि भौतिक क्लेश है। और अध्यात्म क्लेश क्या है? क्लेश जो हमारे ज्ञान से प्राप्त होते हैं। जैसे एक बार दो मित्र थे, एक गांव का एक शहर का, तो गांव वाला एक बार शहर वाला मित्र गांव में आया और देखते मेरा मित्र कितना गरीब है, एक मिट्टी के घर में रहता है, सारा दिन खेत में काम करते हैं और इतना सब पानी को मिलता है। तो सोचे कि इसको शहर में ले जाऊं, शहर में ले गए, एक फाइव स्टार होटल में गए, देखो अरे क्या ये क्या है, स्वर्ग में आ गए हैं क्या? शहर वालों ने बोला नहीं नहीं होटल में गए, लिफ्ट में गए। तो गांव वाला बोला अरे देख गांव में इतना बड़ा से कमरा था, इतना छोटा कमरा दे दिया। तो शहर वालों ने बोला अरे लो भाई मैंने बटन दबाया, वो बेचारा गांव वाला कितना डर गया ना, लिफ्ट घुटने लगे कितना डर गया, पानी डाले कमरे को आकाश में उड़ रहे हैं क्या। तो फिर कमरे में ले गए और बल्कि ने एक मिनट आधा घंटे के लिए मीटिंग जा रहा बस यहाँ बैठा, किंतु वो आदमी इतना डर गया है कि एक इंच भी नहीं घूमना चाहा, गर्मी लग रही है, एसी के पास में है चला सकते हैं, प्यास लग रही है रिफ्रिजरेटर में ठंडा पानी है, किंतु उनकी अज्ञानता से क्लेश हुआ ना। आधा घंटे के बाद वो आदमी वो मित्र आया और देखा क्या दोस्त ना कपड़ा हुआ है, देखा कि पसीना आ रहा है। वो मित्र ने देखा अरे आपको एसी चलाना नहीं आता? बोलो नहीं एसी क्या होता है, एसी चलाया ठंडा पानी दे दिया। तो ये गुरु ऐसा ही है, हमारे ज्ञान का को दूर करके शिक्षक देख करके हमें मतलब हमारी सब क्लेश को दूर करते हैं, ये गुरु। तो गुरु जी ने आदेश किया कि मैं प्रहलाद चरित्र के ऊपर कुछ बताऊं,
बस इतना ही रखो आज बस पीछे। श्रीमान तीर्थ महाराज जी कुछ प्रहलाद चरित्र के प्रहलाद जी के भक्ति के संबंध में उनके शिक्षाओं के संबंध में कुछ बोला। जो शिक्षा दी वो समस्त लोगों के लिए उपयोगी है, हम सभी लोगों के लिए उपयोगी है। उसमें शुद्ध भक्ति की बात कही गई है। यद्यपि प्रहलाद महाराज जी ज्ञानी भक्त हैं, ज्ञानी का मतलब ये नहीं कि वो मुक्ति इत्यादि चाहते हैं, भगवान के तत्व को वो सब प्रकार से जानते हैं और वो महाभागवत हैं। जहां जहां उनकी दृष्टि जाती है प्रत्येक जीवों के अंदर में अपने उपास्य देव को देखते हैं और उपास्य देव में सब प्राणियों को देखते हैं, ऐसे महाभागवत हैं। इसलिए जीवों के कल्याण करने के लिए असुर बालकों को बुलाया, कल खेलेंगे आज मेरी बात थोड़ी सी सुनो और जो उपदेश दिया आप लोग सुनिए, जीवन में पालन करने की चेष्टा करो। बोलो मैं और भी सरल सहज बौद्ध गम्य रूप में इसको बतला रहा हूं। प्रहलाद महाराज जी ने कहा, बचपन से ही भगवान का भजन आरंभ करो, बुद्धि उस समय निर्मल होती है। 50-60 के वर्ष के बाद में बुद्धि सठी आ जाती है। एक चीज को जो ग्रहण कर लेता है फिर उसको छोड़ करके भक्ति में प्रवेश नहीं कर सकता। दूसरी बात, जब ही सुने, जब ही से इस बात का ज्ञान हो जाए कि बिना भगवत भजन किए कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं रह सकता है, जब ही इस बात का बोध हो जाए तो उसी समय से ही भगवान का भजन करना आरंभ करना चाहिए। देवता लोग भी तरसते हैं मनुष्य जन्म के लिए, क्योंकि उसमें भगवत भजन नहीं होता। अधिक धनी आदमी, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, बड़े बड़े धन कुबेर, वो लोग भजन नहीं कर सकते। उसकी व्यवस्था में उनका सारा समाज लग जाता है। आप लोग बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं, आप लोग बहुत सौभाग्यवान हैं, मध्यम श्रेणी में जन्म हुआ है, धन भी इतना भगवान ने नहीं दिया जो मदिरा इत्यादि पान करेंगे, मांस मछली गोश्त खाएंगे। इसलिए अब से, जब से आप लोगों को यह बोध हुआ तभी से भगवान का भजन कर रहे। क्यों, कल क्या होगा कोई ठीक नहीं, घर गिर पड़े, पृथ्वी भूकंप हो जाए और अमेरिका जैसी रीना न क्या रीटा वायु ऐसे आंधी तूफान आ जाए, कोई आतंकवादी आकर के कुछ गन फायर कर दे, कोई भी ठीक नहीं, ये कब कब मर जाए। परीक्षित महाराज जी को 7 दिन का समय था, हमारे लिए कोई समय नहीं है। बूढ़े होने पर कमर भी सीधी नहीं होती है तो क्या भजन करें। इसलिए बचपन से भजन करना आरंभ कर दो। भजन बहुत कठिन है इसलिए नहीं कर सकते, कठिन कुछ नहीं है। मुसलमानों जैसा नमाज पढ़ने के लिए 10-20 बार उठना बैठना कसरत करना पड़ता है, हम लोगों के यहाँ कहा क्या परिश्रम है। हरे कृष्ण कह दो बस हो गया भजन, दिन में रात में भोजन करते समय बिना भोजन किए, आधी रात में टहलते हुए भी बिना माला का, माला के साथ में जोर से भी धीरे धीरे मन ही मन में हरे कृष्ण 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 कर दिया और बस हो गया भजन। क्या पैसा लगा, कुछ नहीं। भगवान का लीलाओं को स्मरण किया जो अभी सुन रहे हैं, इसमें भी कुछ पैसा नहीं लगता। इसलिए बहुत सहज है। प्रहलाद महाराज जी और भी कह रहे हैं, देखो न तत्प्रयासो कर्तव्यो जत आयु वयः परम, न तथा विन्दते क्षेमं मुकुंद चरणाम्बिजम्। देखो जैसा तुम्हारा पूर्व जन्म का कर्म है उसको, उसका जो फल है उसे कोई रोक नहीं सकता, वो आएगा ही आएगा, छप्पर फाड़ करके आएगा, खुदा गिराएगा जरूर। यदि तुमने सुख के लिए अच्छे कर्म किए हो तो सुख जरूर आएंगे अपने आप। आप लोग कुछ मत कीजिए, हरि नाम कीजिए, हरे कृष्ण, देखिए भोजन आता कि नहीं, मैं इसके लिए गारंटी हूं। एक दिन, दो दिन, तीन दिन देखो तो कुछ मत करो, बस हम लोगों के साथ में रख करके ताली बजाओ और हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम। देख लो तो भोजन आता है कि नहीं, यहीं पर बैठे रहोगे लोग दे जाएंगे। हम लोग भोजन के लिए तनिक भी प्रयास नहीं करते और लोग तरसते हैं कि महाराज जी हमारे यहाँ भोजन करें ना? तो ऐसे ही वेश्या भी हरिदास ठाकुर के नाम से मुख सुन करके महा वैष्णवी हो गई और उसके दर्शन के लिए लाखों करोड़ लोग जाते और तरह तरह का उपहार ले जाते, कुछ नहीं लेती, बस जिनका निर्वाह के लिए जो जरूरत होती, एक कपड़ा जब फट जाता तो दूसरी लेती और कुछ भी फल मूल कंद बस एक बार खाने। वो भी एकादशी को वो भी नहीं चाहिए, निर्जला उपवास क्या जरूरत है। इसलिए भगवान का भजन कठिन नहीं है, दुख भी आएगा बिना बुलाया आएगा, सिर पर चढ़कर आएगा, भोगाएगा। कोई बुढ़ावना नहीं चाहते, हमारी जितनी लड़कियां हैं बड़ी सुंदरी सुंदरी छोटी, बुढ़ावनी कोई चाहती है? सिर का बाल पक जाए कोई चाहता है? उसमें क्या लगा लेते हैं जो लाल हो जाता है, होठ में लाली नहीं होती तो रंग लगा लेते हैं, किंतु बुढ़ापा नहीं छोड़ेगी, जरूर आएगी, मरना भी होगा। जो कुछ कमाई किया एक ढेला भी तुम्हारे साथ में नहीं जाएगा, ये समझ रखो। गोल्डन चेन होगा तो लोग खोल लेंगे, तुलसी नहीं छोड़ेंगे, इसको नहीं छू सकते। इसलिए जो सुख और दुख भोगना है वो आएगा, हंस करके भोगो। जैसे सुख है भोगा वैसे दुख को भी भेजो। इस प्रकार से सब समय भगवान का स्मरण कीर्तन करो, देखो भगवान तुम्हारे वशीभूत हो जाए। दुख में उद्विग्न मत हो, सुख के लिए कामना मत करो। वीतराग भय क्रोध, जीत लो क्रोध को और भगवान की हरि कथाओं में लग जाओ, वही तो योगी पुरुष है, वही सब कुछ को पार कर जाएगा, भगवान के चरणों में उसको प्रेम हो जाएगा। देखिए गधे की भांति परिश्रम मत करो। गधा क्या करता है? गधे का विशेष गुण है अच्छी अच्छी चीजों की बोरी अपने ऊपर में लाद लेता है, कपड़ों को भी दूसरों के घर में पहुंचा देता है। और खाता क्या है? दुर्लभती गधी, क्या गधी पीछे से मारेगी मुख में और उसका पीछा नहीं छोड़ता, ये गधे होते हैं। तो जो भगवान का भजन नहीं करते यथार्थ में वो गधे हैं, गधे मत बने। इसी जन्म में सुजोग है भगवान का भजन, यदि हो गया हो गया, नहीं तो कीड़े मकोड़े गधे सुअर कुकर होकर के जन्म लेना पड़ेगा, कोई रोक नहीं सकेगा, जरूर होगा। इसलिए इस जन्म में जिसमें पैसा कौड़ी कुछ नहीं लगता है, भगवान का भजन करके अपने जीवन को सफल बना लीजिए, अंततः रास्ते पर तो आ जाइए। यदि आरंभ कर दिया भक्ति का तो इस जन्म में नहीं तो दूसरे न तीसरे चौथे जन्म में वो सिद्ध होगा। यदि कोई अपराध नहीं, बस अपराध से डर, किसी वैष्णव का भगवान का भक्तों की निंदा मत करो, निंदनीय व्यक्ति भी हो तो उसकी भी निंदा मत करो, सब समय भगवान में अपने चित्त को लगाए रखो। यही समस्त उपदेशों का सार प्रहलाद महाराज जी और बतलाया। क्या सबसे पहले? गुरु शुश्रूष, गुरु जी की सेवा करो, जो कुछ लाभ हो गुरु जी के चरण में दो, क्यों वो भगवान के चरण में दे दे, अपने लिए नहीं रखते। सदगुरु का पहला लक्षण ये है, यदि कोई प्रणाम करता है, कोई चीज देता है, कोई फल देता है, तो वो क्या करते हैं? वो प्रणाम करते हैं कि हमारी योग्यता से नहीं आया है, ये हमारी गुरु जी ने जो योग्यता दी उसलिए आता है, ये गुरु को प्रणाम हमारा है, गुरु को सौंप देते हैं सब कुछ गुरु, और वो अपने गुरु को गुरु परंपरा से कृष्ण को वो मिल जाता है। इतने बड़े गुरु दयालु हैं, इसलिए गुरु जी की सेवा करो और उस सेवा को और भी सुंदर बना करके, साफ करके, निर्मल करके, अपने गुरु को गुरु की गुरु को एकदम कृष्ण और राधा तक वो तुम्हारी सेवा पहुंच जाएगी। इसलिए गुरु शुश्रूष है और सर्वलाभार पड़े न, जो कुछ है गुरु को दो। और तीसरा ईश्वर आराधने, ईश्वर की आराधना करो, और क्या और साधु भक्तों के संग में रहो, हरि कथा सुनो, वो तुमसे कुछ पैसा नहीं लेंगे, 7 दिन का सप्ताह करेंगे। इसलिए हमको 4 लाख रुपया चाहिए, ये वृंदावन के कथा बांटने वाले आएंगे कहेंगे हम लोग नहीं मानेंगे, हम लोग और कुछ दे जाएंगे, पैसा कोई जरूरत नहीं होती। जिसने अपना जीवन ही अर्पण कर दिया उसके लिए पैसा क्या चीज, वो अपने जीवन को भी दे सकता है। और भगवान की लीला कथाओं को, उनके मुख से श्रवण करो, ये सब बातें होने पर अपने आप कृष्ण उसके हृदय में प्रकट हो जाएंगे लीला कथाओं के माध्यम से, हृदय को निर्मल कर देंगे और प्रेम भक्ति दे देंगे। संक्षेप में प्रहलाद महाराज जी के उपदेशाओं का ये सार है, आप लोग श्रवण किया। अभी हम लोग, समय हो चुका है, अब हम लोग बंद करेंगे, कल फिर हम कथा आरंभ करेंगे भागवत का, और अभी अभी कीर्तन ये करेंगे, कीर्तन से समाप्त।
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय।